बच्चों नमस्कार। आज हम लोग 11वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग एक के गद्य खंड से दूसरा पाठ मियाँ नसीरुद्दीन पढ़ेंगे। इस पाठ की लेखिका कृष्णा सोबती हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग लेखिका का परिचय समझते हैं। कृष्णा सोबती का जन्म सन 1925 गुजरात पश्चिमी पंजाब वर्तमान में पाकिस्तान में हुआ था। जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ऐ लड़की, समय सरगम इनके उपन्यास हैं। डार से बिछुड़ी, मित्रों मर जानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी, अंधेरे के इनके कहानी संग्रह हैं। हम हसमत शब्दों के आलोक में शब्द चित्र संस्मरण हैं। साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का शलाका सम्मान, साहित्य अकादमी की 70 सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती की विशिष्ट पहचान है। उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपना एक नित नया पाठक वर्ग बनाया है। उन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चरित्र दिए हैं जिन्हें अमर कहा जा सकता है, जैसे मित्रों, शाहनी, हसमत आदि। कृष्णा जी के भाषिक प्रयोग में भी विविधता है। उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी है। संस्कृत निष्ठ तत्समता, उर्दू का बांकपन, पंजाबी की जिंदादिली, ये सब एक साथ उनकी रचनाओं में मौजूद हैं। अब आप लोग मियाँ नसीरुद्दीन पाठ का मूल भाव सुनिए। मियाँ नसीरुद्दीन शब्द चित्र हम हसमत नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें खानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। मियाँ नसीरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपने खानदानी महारत को बताते हैं। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। अब आप लोग मियाँ नसीरुद्दीन पाठ का सारांश सुनिए। एक दिन दोपहर में लेखिका जामा मस्जिद के निकट बसे पुराने मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले से गुजर रही थी। वहाँ से निकलते समय उसने एक साधारण सी दुकान पर ढेर सा आटा गूंथते हुए देखकर सोचा, शायद सेवइयों की तैयारी होगी, पर पूछने पर पता चला कि वह नान अर्थात रोटियां बनाने वालों के मसीहा कहे जाने वाले वह 56 प्रकार की रोटियां बनाने में माहिर मियां नसीरुद्दीन नानबाई की दुकान थी। मियां अंदर ही चारपाई पर बैठे बीड़ी के दम ले रहे थे। उनके चेहरे पर गहरे अनुभव की झलक थी और आँखों में चुस्ती और चतुराई चमक रही थी। मियाँ नसीरुद्दीन का अपने खानदानी पेशे पर अत्यंत अभिमान था। लेखिका द्वारा यह पूछने पर कि उन्होंने इतने प्रकार की रोटियां बनाने की कला को कहां से सीखा, पर वे अपने बेपरवाही वाले खास अंदाज में उसे बताते हैं कि नानबाई का काम कई पुश्तों से उनके घर में चला आ रहा है और उन्होंने यह कार्य अपने पिता मियाँ बरकत शाही से सीखा, वही उनके गुरु थे। मियाँ नसीरुद्दीन अपनी खानदानी शान का एहसास करते हुए उन्हें बताते हैं कि उनके वालिद मियाँ बरकत शाही गढ़ैया वाले नानबाई के नाम से मशहूर थे तथा उनके दादा साहिब मियाँ कल्लन भी बहुत ऊंचे दर्जे के नानबाई थे। लेखिका के द्वारा मियाँ नसीरुद्दीन से उन्हें उनके दादा व पिता से मिली किसी सीख के विषय में पूछने पर वे बताते हैं कि हुनर सच्ची लगन और मेहनत से सीखा जाता है। जैसे पढ़ाई में अलीफ से शुरू होकर आगे बढ़ा जाता है या फिर कच्ची पक्की से होती हुई ऊंची जमातों में पहुंचा जाता है, वैसे ही हुनर सीखने के लिए उससे जुड़े हुए छोटे से छोटे काम स्वयं करने पड़ते हैं। छोटे काम करके ही फिर बड़े कामों की तरफ बढ़ा जाता है। मियाँ अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि उन्होंने भट्टी में आंच देने और बर्तन धोने तक के छोटे छोटे काम अपने हाथ से करके रोटी बनाने की कला को सीखा था। वे आगे बताते हैं कि अपने पिता की इस दुकान पर भी वह सीधे आकर नहीं बैठे थे, अपितु इसके लिए भी उन्होंने गली गली सामान बेचने का अनुभव प्राप्त किया था, जिसके उपरांत ही उन्हें यह जिम्मेदारी मिली थी। लेखिका द्वारा अन्य नान भाइयों के विषय में पूछने पर मियाँ नसीरुद्दीन उन्हें बताते हैं कि वहाँ अन्य नान भाई अवश्य हैं किंतु खानदानी नहीं। अपने परिवार के इतिहास पर गौरवान्वित होकर वे उन्हें बताते हैं कि एक बार बादशाह सलामत ने उनके बुजुर्गों से कहा कि ऐसी चीज बनाओ जो न आग से पके न पानी से बने। उन्होंने ऐसी चीज बनाई जिसे बादशाह ने खूब पसंद किया, लेकिन वे उसके विषय में नहीं बताते। अपने पूर्वजों की प्रशंसा करते हुए वे कहते हैं कि खानदानी नान भाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। लेखिका द्वारा कहावत की सच्चाई पर प्रश्न चिन्ह लगाने पर वे भड़क उठते हैं। लेखिका जब उनसे यह पूछती है कि उनके बुजुर्ग किस बादशाह के यहाँ काम करते थे, तो उसे सुनते ही उनका स्वर बदल जाता है। वे स्वयं बादशाह का नाम न जानने के कारण इधर उधर की बातें करने लगते हैं, किंतु लेखिका द्वारा बार बार पूछने पर वे अंत में उसे खींच कर बोलते हैं कि आपको कौन सा उस बादशाह के नाम चिट्ठी पत्री भेजनी है, कहकर उसकी बातों को टाल देते हैं। लेखिका से पीछा छुड़ाने के लिए मियाँ नसीरुद्दीन बब्बन मियाँ को भट्टी सुलगाने का आदेश देते हैं। लेखिका ने उनके बारे में जानना चाहा तो वे कहते हैं कि वे उनके कारीगर हैं, लेकिन उनके बच्चों के विषय में जानना चाहती थी, किंतु उनके चेहरे पर छुपे हुए रोष को देखने के उपरांत वे अपना विचार त्याग देती है और उनके कारीगरों के विषय में बातें करने लगती हैं। मियां नसीरुद्दीन उन्हें बताते हैं कि वे उन्हें 2 रुपये मन आटे की व 4 रुपये मन मैदे की मजूरी देते हैं। लेखिका द्वारा रोटियों की किस्में जानने की इच्छा से पूछे गए सवाल पर वे बाकर खानी, शीरमाल, ताप्तान, खमीरी इत्यादि रोटियों के फटाफट नाम गिनवा देते हैं। वे तुनकी रोटी की तारीफ करते हुए कहते हैं कि वह पापड़ से भी महीन होती है, लेकिन कहते कहते वह पिछले जमाने की यादों में खो जाते हैं और कहते हैं कि पहले के जमाने जैसा खाने पीने का शौक अब किसे है। न तो लोगों को वह शौक है और न उन चीज़ों की कद्र। आज के ज़माने में तो भारी एवं मोटी तंदूरी रोटी का बोल वाला है, क्या बनाएं और क्या खिलाएं। धन्यवाद।